नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार ऐसा बजट लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्योगों को प्रोत्साहित, निवेश को आकर्षित और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करे। दिल्ली विधानसभा ने कार्य संचालन को अधिक प्रभावी, सटीक और आधुनिक बनाने के लिए विधान साथी नामक AI सक्षम चैटबॉट का शुभारंभ किया। IIT दिल्ली ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए पहली कॉमिक बुक शैली ब्रोशर का विमोचन किया और चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू। राजधानी के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2026 के बजट को उद्योग अनुकूल बनाने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर केंद्रित करने के उद्देश्य से सचिवालय में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने भाग लिया और अपनी मांगें, सुझाव तथा अपेक्षाएं सरकार के समक्ष रखीं। इनमें औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत सुधार, औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड करने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ऐसा बजट लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्योगों को प्रोत्साहित, निवेश को आकर्षित और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करे। श्रीमती गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता के साथ बजट में शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा ने अपने कार्य संचालन को अधिक प्रभावी, सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में विधान साथी नामक AI सक्षम चैटबॉट का आज शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधान साथी एक समर्पित विधायी अनुसंधान और सहायता उपकरण के रूप में कार्य करेगा जो विधायकों को स्पष्ट, संदर्भित और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराकर सदन में होने वाली चर्चाओं को अधिक तथ्यात्मक, सारगर्भित और प्रभावशाली बनाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली विधायिका है जिसने अपने सदस्यों के लिए प्रकार का AI सक्षम चैटबॉट विकसित किया है।
ये QR कोड के माध्यम से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। सभी के डेस्क पर ये QR कोड होगा और इसके अलावा उसका लिंक भी उनसे शेयर किया जा रहा है। ये दिल्ली विधानसभा के 70 विधायकों तक सीमित है और विधायक जो भी विषय रखेगा सदन में वो एवर लास्ट रिकॉर्ड पर रहता है। इसके अंदर रूल बुक भी आप एक्सेस कर सकते हैं, असेंबली की जो डिबेट्स है पुरानी वो आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आप कमेटीज की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये हर AI टूल के साथ कनेक्ट है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देश के अनुसार फ्लेक्स, विनाइल और PVC पर डिजिटल प्रिंटिंग को ग्रीन श्रेणी में शामिल किया है। दिल्ली पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को व्यापार में आसानी लाने वाला कदम बताया। श्री सिंह ने कहा कि पहले ग्रीन श्रेणी को संचालन की अनुमति के लिए 120 दिन का समय लगता था, जिसे अब सिर्फ 20 दिन में मान्यता दे दी जाएगी। श्री सिरसा ने बताया कि इससे पहले 125 से अधिक क्षेत्र जैसे अपैरल, एल्यूमिनियम, वस्तुएं, फर्नीचर, पैकेजिंग, खिलौने और कोल्ड स्टोरेज इसमें शामिल किए गए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि यह फैसला सरकार की उस सोच को दिखाता है जिसमें प्रदूषण से लड़ते हुए उद्योग को आगे बढ़ाएगा और लघु उद्योगों की प्रगति को एक नई रफ्तार देगा। साथ ही दिल्ली के प्रिंटिंग उद्योग के से जुड़े लाखों उद्यमियों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। IIT दिल्ली के पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए पहली कॉमिक बुक शैली ब्रोशर का विमोचन किया। इसका उद्देश्य पदार्थ इंजीनियरिंग की दुनिया को हास्य, कहानी और कला के माध्यम से जीवंत बनाना है। साथ ही रोचक कथा शैली के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाने और वास्तविक दुनिया से विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे पदार्थ इंजीनियरिंग को प्रभावशाली और सहज रूप से समझने योग्य बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रम संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा पेशेवर दक्षताओं के विकास हेतु भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय के भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने के क्षेत्र में व्यावसायिकता को सुदृढ़ करना, रोजगार योग्यता और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाना, अनुसंधान प्रशिक्षण प्रलेखन और प्रसार को बढ़ावा देना है। साथ ही क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुगम बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में सहायता करना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय में संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम पाणी ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का और विस्तार करेगा, जिससे वैश्विक जुड़ाव और रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रगति और जन सुविधाओं का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का विवरण लिया और स्थानीय निवासियों से उनकी समस्याओं पर संवाद किया। लोगों की शिकायत सुनकर अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 2 सप्ताह के भीतर लगभग 1,25,000 घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 5,600 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन लिया है। वाणिज्यिक पीएनजी के बारे में उन्होंने बताया कि करीब 17 राज्य सरकारों द्वारा आवंटन आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है।
भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे केरोसिन और कोल भी दिया है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। हम पिछले कुछ दिन से अपने एलपीजी कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी एलपीजी से सीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों।
सुश्री शर्मा ने बताया कि एलपीजी को लेकर स्थिति चिंताजनक है, लेकिन पूर्ण रूप से भंडार खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग दर बढ़कर 94% हो गई है और घबराहट में आकर बुकिंग करने की संख्या में गिरावट आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी स्टार्टअप और नव प्रवर्तक भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज 100 से अधिक चैलेंजेस के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 14th edition भी जारी किया गया है। डिस्क की अब तक की सक्सेस को देखते हुए 100 से अधिक चैलेंजेस पहली बार हमारी DPSU द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सभी इनोवेटर्स को डिस्क के नए एडिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA आज से अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाओं, पारंपरिक प्रथाओं और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत और भव्य नजारा प्रस्तुत किया जाएगा। आज प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना, सांस्कृतिक विदुषी और पद्म विभूषण डॉ. सोनल मानसिंह द्वारा नाट्य कथा देवी प्रस्तुत की गई। कल प्रख्यात भरतनाट्यम कलाकार, सांस्कृतिक विचारक और पद्म विभूषण डॉ पद्मा सुब्रमण्यम भगवद गीता पर आधारित एक विशेष नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। वहीं महोत्सव का अंतिम दिन भारत की विविध लोक परंपराओं और युद्ध कला को समर्पित होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वयं सेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री गुप्ता ने कहा कि हेडगेवार का तप, त्याग और राष्ट्रनिष्ठ जीवन हमें सदैव संगठित शक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सर्वोपरि के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जिस अद्वितीय कार्य पद्धति का बीजारोपण किया, वह आज राष्ट्र पुनरुत्थान का सशक्त आधार बन चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर्य समाज के स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की है और शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान अविस्मरणीय है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं विशेष शुक्ला।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो गया है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। राजधानी के झंडेवालान, छतरपुर और कालकाजी समेत विभिन्न मंदिरों में आज श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। इन दिनों में व्रत उपवास, पूजा पाठ और देवी भजनों के माध्यम से श्रद्धालु माँ दुर्गा से सुख समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा का खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष। इसे विक्रम संवत के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष को लेकर शहर भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजीव गांधी स्टेडियम और झंडे वाला मंदिर में भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी झंडे वाला मंदिर में भजन क्लबिंग में शामिल रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
चैत्र नवरात्र के अवसर पर दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को राजधानी के सभी प्रमुख मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने और नागरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस पहल के अंतर्गत नियमित सफाई और कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों की टीमें तैनात की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नव संवत्सर, उगादी, साजिबू, चिराउबा, नवरेह, गुड़ी पड़वा, चेती चंद और नवरात्र के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी में आज दिन भर बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार ऐसा बजट लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्योगों को प्रोत्साहित, निवेश को आकर्षित और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करे। दिल्ली विधानसभा ने कार्य संचालन को अधिक प्रभावी, सटीक और आधुनिक बनाने के लिए विधान साथी नामक AI सक्षम चैटबॉट का शुभारंभ किया। IIT दिल्ली ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए पहली कॉमिक बुक शैली ब्रोशर का विमोचन किया। और चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू, राजधानी के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।